खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदावन का शुक्र है कि उसने बाहफाजत मुझे और मेरी बीवी को यहां पर पहुंचाया। आप सबकी दुआओं के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आपकी दुआओं ने हमें हर तरह के खतरे से बचा के रखा और बाहफाजत यहां पर पहुंचाया। तो इससे पहले कि खुदा का कलाम सीखना शुरू करें, आपको याद होगा कि गीत की किताब में गीत नंबर 220 के बोल बहुत ही पुरफजल हैं और खासकर हकीकत है। और इस गीत में कुछ यूं लिखा है, लिखने वाला खुदा का बंदा कहता है, बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए, हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए, जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। सो जब जब हम खुदा के कलाम का मतालिया करते हैं, जब जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, तो बाइबल मुकद्दस खुदा की अकल है, बाइबल मुकद्दस ऐसा आईना है जो हमारी तस्वीर हमें दिखाती है कि हम कौन हैं, जो हमें सिखाती है कि हम मसीह में कौन हैं, और जो सिखाती है कि जो मसीह के बगैर है वो कौन है। और आज हम सब का यहां पर इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि खुदा की इस अकल में से, जिसे बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम कहा गया है, सीखें। क्योंकि बगैर खुदा के कलाम के, उसके सुनने के, उसके समझने के बगैर जिंदगी बंजर जमीन की मानद है। आप सब बंजर जमीन से वाकिफ है, जहां पर कोई फल नहीं लगता, जहां पर कोई रौनक नहीं होती, जहां पर कोई हरा भरा पौधा नहीं उगता, बल्कि बंजर बियाबान बेरौनक होती है। सो जब जब कोई ईमानदार खुदा के कलाम को नहीं सुनता, नहीं समझता और कबूल नहीं करता, तो जिंदगी बियाबान बंजर और मैदान की तरह हो जाती है। सो मेरे साथ आज देखें हमारे दिलों की खेती को हरा भरा करने के लिए, हमारी जिंदगियों को फलदार बनाने के लिए खुदा ने अपना कलाम और खुदा पाक रूप बख्शा है, कि हम इस दुनिया में रहते हुए उस खुदा से मोहब्बत करें जिसने आपसे इतनी मोहब्बत की कि उसका बयान लफ्जों से बाहर है। सो जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप उसकी पहली तीन आयात को हम देखेंगे और इसमें से सीखेंगे अपने उस दुश्मन के बारे में कि वो क्या चाहता है, उस दुश्मन के बारे में उसका तरीका का और उसका काम, क्योंकि आज इस बेदीन जमाना में लोग, खासकर ईमानदार, अबलीस के झूठों और फरेबों में आकर गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें हर रोज अपने दिल का, अपनी सोच का, अपने ख्यालात का जायजा लेने की जरूरत है। हर रोज हमें खुदा के कलाम को, यानी इस आईने को देखने की जरूरत है कि हमारी रूह पर कोई ऐसा दाग, ऐसी झुर्री, ऐसी गुमराही की घटा तो नहीं छा गई। सो नए अहदनामा में से पालूस रसूल के बाकौल रूहुल कुद्दस की कुदरत से लिखे हुए इस कलाम में से पढ़ेंगे। इफ्सियों 2 बाप उसकी पहली आयत, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। पहली आयत में पालूस रसूल ईमानदारों की हालत बयान करता है जब वो बेईमान थे। वो लोगों की हालत और तस्वीर जाहिर करता है कि जो कोई खुदावन यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं करता वो अपने गुनाहों और कसूरों में मुर्दा है, जिसका मतलब है कि खुदावन खुदा से दूर, जुदा, खुदावन का दुश्मन, खुदावन के साथ कोई सुला नहीं और उसके जलाल से महरूम। इसलिए पालूस रसूल कहता है हमें खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया है, हम जो दूर थे ताकि उसके साथ हमारी सुलह हो जाए, हम जो मुर्दा थे ताकि हम जिंदा हो जाएं। और आप सब जानते हैं कि मुर्दा लोग ना सांस लेते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना सूंघते हैं, ना बोलते हैं, ना देखते हैं। और यहां पर रूहानी मुर्दगी के बारे में, रूहानी मौत के बारे में पालूस बात करता है। इसलिए दूसरी आयत में वो कहता है जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। यहां पर पालूस रसूल बताना चाहता है कि जब तुम रूह के मुआफिक नहीं चलते थे तो तुम्हारा चाल चलन क्या था, दुनिया की हम शक्ली करना, दुनिया की नकल करना, दुनिया के ख्वाहिशों को पूरा करना। और दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, खुदा की नाफरमानी। और यहां पर जो लफ्ज दुनिया की रफ्श पर चलते थे का इस्तेमाल पालूस करता है यानी कि इस मौजूदा दौर और वक्त में लोग खुदा के हम शक्ल बनने के बजाय, खुदा के जोर में चलने के बजाय किसके जोर में चलते थे, दुनिया। और हम सब बहुत दफा रूह के मुआफिक नहीं बल्कि जिस्म के मुआफिक चलते हैं। इसलिए पालूस रसूल कहता है खबरदार, हमें इस राह पर नहीं चलना, खबरदार हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। और वो सिखाना चाहता है कि हमारा एक मुखालफ है जिसने बहुत सी दुनिया को अंधा, गुलाम, खुदा से दूर और गुनाह की बीमारी की ऐसी लत में मुबतला किया हुआ है जो उनसे निकलना नहीं चाहते। गुनाह के कोड़ में लोग फंसे हुए हैं। इसलिए पालूस कहता है कि ये किस लिए है, क्योंकि एक हाकम है, एक सरदार है, एक ऐसी कुवत, ऐसी शख्सियत है जो नहीं चाहती कि लोग आजाद हों, जो नहीं चाहती कि लोग खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति करें। और इसलिए पालूस रसूल इन पहली 3 आयत में और 3 आयत में कहता है इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादा पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। यहां पर पालूस रसूल तमाम बनीनु इंसान की हालत बयान करता है, खासकर उनकी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। आप जितनों ने यीशु को कबूल किया है, पालूस रसूल कहता है तुम जिंदा हो। पालूस रसूल कहता है कि तुम उस हाकम की गुलामी में नहीं हो जिसे अबलीस शैतान कहा गया है। पालूस रसूल कहता है कि तुम उस रूह के ताबेदार नहीं हो जिसे बदकारी की रूह कहा गया है, जिसे अबलीस की रूह कहा गया है, जिसे गुमराही की रूह कहा गया है। और पालूस कहता है कि तुम नाफरमानी के फर्जंद नहीं बल्कि खुदा के फर्जंद हो। सो आज मैं चाहता हूं कि हम सब अपने मुखालफ के बारे में जानें, उस दुश्मन के बारे में जानें कि वो क्या करता है, उसका क्या काम है और बाइबल मुकद्दस उसके बारे में क्या तालीम देती है। कौन कौन जानना चाहता है अपने दुश्मन के बारे में? सभी जानना चाहते हैं, ये जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानते तो आप किस तरह उसे हरा सकते हैं? अगर आप अपने दुश्मन की कमजोरी को नहीं जानते तो किस तरह उस पर गालब आ सकते हैं? अगर आप अपने दुश्मन की हिकमत अमली यानी कि उसका तरीकाकार नहीं समझते तो किस तरह जान सकते हैं? और अबलीस का काम है गुमराह करना। अबलीस का काम क्या है? गुमराह करना। इसलिए आप सब बहनों से, नौजवानों से, इस आने वाली नस्ल से जो बच्चों की सूरत में बैठी है, इन्हें आज ही से सिखाने की जरूरत है कि मसीहत खेल तमाशा नहीं, खुदा की इबादत सिर्फ खेल ही नहीं, खुदा की इबादत सिर्फ एतवार ही को नहीं बल्कि हर रोज हमें उसकी परस्तिश करने की जरूरत है। और मेरी दरख्वास्त है बहनों से, खासकर उन बहनों से जो शादीशुदा हैं, दुआ करें और खासकर अपने खामदों को खासकर एतवार की इबादत में लाने के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदा ने उनको बहुत ही मोहतरम इज्जतदार ओहदा दिया है। खुदा ने खामदों को बीवी का सर कहा है। सो आज मैं चाहता हूं कि मेरे साथ देखें इन चंद एक हवाला जात को जो अबलीस के बारे में, शैतान के बारे में हमें बताते हैं कि उसका काम क्या है, उसका तरीकाकार क्या है। उसका काम है गुमराह करना, उसका काम है नकल करना। सो हम देखेंगे आज कि क्या आज हम अबलीस की नकल कर रहे हैं या फिर यीशु मसीह की। आज दुनिया अबलीस की हम शक्ल बन रही है या फिर यीशु मसीह की। आज ईमानदार दुनिया के हम शक्ल बनना चाहते हैं या फिर मसीह के हम शक्ल। सो मैं चाहता हूं कि अबलीस के उन शैतानी निजाम के कामों को देखें जो वो काम करता है, जिसमें वो दुनियावी कुव्वत, जिसमें वो मजहब परस्ती और शैतानी निजाम को इस्तेमाल करता है, और आज उसके मुख्तलिफ नौ तरीकाकार को देखेंगे जिनमें वो नकल करता है, जिनमें वो असलियत को छुपाता है, जिनमें वो गुमराही पैदा करता है, असल की वो नकल बनाने की पूरी कोशिश करता है। और इसलिए आपको अपने मुखालफ अबलीस दुश्मन के बारे में जानने की जरूरत है। अबलीस हरगिज, शैतान हरगिज वैसा नहीं जैसा आप समझते हैं कि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि वो हरे रंग का है, उसके सींग है, हाथ में उसके तीन सुमों वाला एक लोहे का पंजा पकड़ा हुआ है, उसकी पूंछ है और उसका चेहरा भयानक है। अबलीस शैतान ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बयान करती है और बताती है, क्यों? ताकि कोई गुमराह ना हो। दुनिया के लोग अबलीस को भयानक और बेहुदा बयान करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस उसकी सच्ची तस्वीर बयान करती है। दुनिया के लोग अबलीस के वजूद को नहीं मानते, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है अबलीस शैतान हकीकत है। दुनिया अबलीस का इनकार करती है, लेकिन बाइबल इकरार करती है कि वो है, उसे कुव्वत दी गई है और उसका काम है गुमराह करना। इसलिए अपने जहन से ये निकाल दें कि हरी पूछ वाला और उसके सर पर दो सींग है और लोहे का हाथ में पंजा पकड़ा हुआ है और उसके मुंह पर भयानक सी शक्ल बनी है। बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं बयान करती। मेरे साथ देखना चाहते हैं कि अबलीस की तस्वीर और उसका तरीका कार क्या है? आज मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से हिजकियल नबी का सहीफा, उसका 28वां बाप, उसकी 11वीं आयत में खुदा का बंदा जब हिजकियल उस पर कलाम नाजल हुआ, खुदावन ने उससे कलाम किया, तो वो अबलीस को, उस फरिश्ते को जो खूबसूरत था, जो समझ में इतना 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 सयाना है, दानिशमंद है कि इस जमीन पर उस जैसा और कोई नहीं है, खूबसूरती में वो हुस्न ने बहुत ही खूबसूरत, उसकी आवाज इतनी सुरीली थी जैसे बहुत दफा आप फिल्मों में या देखते हैं या सुनने में आता है कि मैंने ड्रोनी आवाजों को सुना। ये इंसानी सोच है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अबलीस, उसकी इतनी खूबसूरत आवाज है कि वो एक मिनट में इंसान को मोम कर देता है, एक सेकंड में वो गुमराह कर देता है। सो मेरे साथ इस हवाला को देखें और घर जाकर भी इस हवाला को बार बार पढ़ें, ताकि आपको हकीकी तौर पर पता चले कि आपका मुखालफ दर हकीकत है कैसा, उसका सोचना, उसकी शक्ल सूरत, उसे कौन सी कुवत हासिल है। तब ही हम समझ पाएंगे इस रूहानी जंग को। जब तक अपने मुखालफ को नहीं जानते, हम किस तरह उसके झूठ और फरेब और उसकी गुमराह करने वाली बातों पर गालब आ सकते हैं या समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू इस बात से किया था, जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए, दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। सो हिजकियल 28वां बाप, उसकी 11वीं आयत, और यहां पर यूं लिखा है, और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजल हुआ, हिजकियल नबी कहता है कि ऐ आदम जात, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामल है। यहां पर सूर के बादशाह को मखातब करते हुए तस्वीर बयान की गई है अबलीस की, कि वो अकल और दानिश में इतना महान, इतना तेज और तराज के बहुत ज्यादा उसे हिकमत और दनाई हासिल थी, उसे बहुत से भेद पता था, वो दानिशमंद था, वो अकलमंद था, ऐसा फरिश्ता कि उसकी मानद खुदावन ने और कोई फरिश्ता तैयार ना किया। और हुस्न में बहुत दफा तस्वीरें बयान की जाती हैं इबलीस की, कि वो भयानक है, बड़े बड़े दांत है, उसके बड़े बड़े कान हैं और सर से गंजा है और उसके सर पर दो सींग है, उसकी बड़ी पूंछ है। ये इबलीस की तस्वीर नहीं। इबलीस के बारे में कहा गया है दानिश से मामूर, 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा, और हुस्न में कामल है, और 13वीं आयत में क्या लिखा है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था और हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। मसलन उसके बदन पर जो खूबसूरती, उसके बदन पर उसकी जो पोशाक पर उसके ऊपर जो खूबसूरती बयान की गई है, यहां पर कहा गया है मसलन ये वो नग हैं जिसे बहुत दफा लोग कहते हैं कि मेरे पास यकूत है, मेरे पास ये हैं, वो हैं, वो हैं। सो यहां पर बाइबल बयान करती है उन नगों के बारे में जो आजकल बहुत से इंसान अपने हाथों में पहनते हैं। मसलन याकूते सुरख, फुकराज और अलमास और फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जुमुर्द और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पदेश ही के रो से जारी रही। ये वो सब बातें, वो सब कीमती नग, कीमती क्या कहते हैं मोती, ये सब क्या थे उसकी पोशाक पर नगीना बंदी की सनत की गई थी, पदेश ही से उसके साथ थी। और चौदहवीं आयत में क्या लिखा है, तू मंसूह करूबी था जो साया अफगान था और मैंने तुझे खुदा के कोहे मक्तस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था, तू अपनी पदेश ही के रोज से अपनी राह रसम में कामल था, जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई। जब आप इस पूरे हवाला को 19वीं आयत तक देखते हैं तो यहां पर अबलीस के बारे में बताया गया है। वो एक फरिश्ता था, वो खुदा के अदन में रहता था, वो खूबसूरत था, वो हिकमत और दनाई में बहुत दानिशमंद था और उसकी आवाज बहुत ही सरीली थी। वो खुदा के अदन में, खुदा के फरिश्तों में कह सकते हैं कि उस प्रस्तुत करने वाली टीम का, क्वायर का लीडर था। सो इसलिए अपने जहन से निकाल दें कि अबलीस हरे रंग का है या पीले रंग का है या उसके बड़े बड़े दांत हैं। और क्या लिखा है, तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की मानद फेंक दिया और तुझ साया अफगान करूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। क्यों, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख लें। यहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है, इसलिए हमें हर रोज अपने इस मुखालफ के बारे में समझने की जरूरत है। ये हमारे पास आता है हमें बहकाने के लिए, तरह तरह के तरीकों से, तरह तरह की सोचों से, तरह तरह की बातों से। आप सोचते होंगे कि हमें अबलीस से क्या लेना देना। याद रखें, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अबलीस का लेना देना आप ही के साथ है। वो नहीं चाहता कि ईमानदार गिरजा घर में आए, क्योंकि जब बाइबल मुकद्दस को सुनेंगे तो वो अपने मुखालफ के बारे में जानेंगे और जब जानेंगे तो फिर उसके झूठों से वाकफ होंगे, जब झूठों से वाकफ होंगे तो फिर वो झूठ के फरेब में नहीं आएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जब दुआ का वक्त होता है, जब दुआ का टाइम होता है, जब खुदा के कलाम को सुनने की बारी आती है तो हम अजीब कैफियत, अजीब हालात हमारे होते हैं, अजीब सोचें पैदा हो जाती हैं, अजीब तरह की फिक्रें घेरने की कोशिश करती हैं। और खासकर घर के जो सरबरा है, यानी के भाई हैं, जो शादीशुदा हैं, नौजवान हैं, उनके जहनों में, उनके दिलों में अबलीस ने आज क्या पैदा किया हुआ है, छोड़ो परे चर्च जाकर क्या करोगे। क्रिसमस का दिन, ईस्टर का दिन काफी है चर्च जाने के लिए। आप यहां पर बैठे हैं, अब जाकर आप देख सकते हैं कि बिलियट भरी पड़ी होगी नौजवानों से। क्यों? क्योंकि अबलीस ने उनको गुमराह किया हुआ है, बहकाया हुआ है। इसलिए अबलीस नहीं चाहता कि ईमानदार खुदा के कलाम को सुने। अबलीस नहीं चाहता कि कोई गैर ईमानदार यीशु को कबूल करे। मेरे साथ एक हवाला देखें नए अहदनामा में से, दूसरा करंथियों 3:3, उसकी दूसरा करंथियों 11:3 उसकी 3 आयत। पालूस रसूल बयान करता है कि अबलीस का काम है बहकाना, और ये बात उसने सबसे पहले आदम और औरत के साथ की। सो जब हम निकालते हैं दूसरा करंथियों 11:3 उसकी 3 आयत, जो बहन भाई लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं इन हवाला जात को, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे याद रखने में कि आपका वास्ता किससे है, आपका दुश्मन कौन है और उसका काम क्या है। वो आपको हरगिज नहीं रोकेगा नए कपड़े पहनने से, वो आपको हरगिज नहीं रोकेगा बुरी राहों पर जाने से। वो अगर रोकेगा तो नेकी की राह से, अगर वो रोकेगा तो बाइबल सुनने से, अगर वो रोकेगा तो आपको खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने से। सो 3 आयत में लिखा है, पालूस कहता है, लेकिन मैं डरता हूं। पालूस की ये सोच है, ये फिक्र है, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया। ये सांप कौन था जिसमें अबलीस व लूसीफर फरिश्ता समाया और सांप बोला। पालूस यहां पर कहता है, जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से, यानी के फरेब से, धोखे से, बहकावे से, गुमराही से हवा को बहकाया, यानी के गुमराह किया, उसको अभारा, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। पालूस नहीं चाहता कि ईमानदारों की तवज्जो, ईमानदारों का ध्यान और ख्यालात खुदावंद यीशु मसीह से हट जाएं। जब यहां पर से ख्यालात खत्म हो जाएंगे तो मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आएगी। जब हम सोचेंगे नहीं तो फिर हम समझेंगे नहीं। सो पालूस जानता है कि अबलीस कहां पर हमला करता है। वो आपके हाथ पर, आपके पांव पर, आपके रास्ते पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर हमला करेगा ताकि आप गुमराह हो। और जब आपको उसने गुमराह कर लिया, जब आपको उसने सुस्ती डाल दी, जब लोगों को उसने गुमराही की राह पर डाल दिया, उसका मकसद पूरा हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया। और यही इबलीस चाहता है। और 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे मसीह की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिली है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। जब हमारी सोच पर वो हमला करता है तो फिर वो खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश करता है। फिर बहुत दफा अपने मकसद के लिए बाइबल की आयात को तब्दील करते हैं अपने जहन में। हम बाइबल में से तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अपने जहन में उसका मतलब तब्दील करते हैं। क्योंकि अबलीस का ये काम है कि दुरुस्त कलाम को गलत करना, खुशखबरी के पैगाम को गलत करके बयान करना, सच्चाई को दुरुस्त नहीं बल्कि गलत तौर पर बताना। इसलिए अपनी सोच की बहुत ज्यादा देखभाल करें। अगर आपका सोचना सेहतमंद है तो आप अपनी जिंदगी में रूहानी सेहत देखेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में اپنے خیالات میں پریشان ہیں تو آپ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوں گے اور روحانی طور پر بھی بیماری محسوس کریں گے، جدائی محسوس کریں گے، خدا کے ساتھ تعلق کو دوری کو محسوس کریں گے، خدا کے ساتھ خدا پر یقین کرنے میں آپ کو شک پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنے سوچنے کے طریقہ کار کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں۔ آج جتنے لوگ آپ جب جائیں گے یہاں سے ابھی اور 15-20 منٹ میں ابھر جا کر دیکھیں گے، جتنے لوگ گلیوں کی نکر پر، خاص کر ہمارے بھائی اور بہت سے ہمارا باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، نکروں پر کھڑے ہیں اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے کہ کوئی فائدہ نہیں گرجا گھر میں جانے کا۔ اور اگر ان کا دل راضی بھی ہو تو وہ کہیں گے اوہ میں نہیں جانا، مینوں کتے پادری صاحب دعا دا نہ کہہ دن، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا لوگ کی کہیں گے، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا لوگ کہیں گے کہ اج بھائی جی کیویں آ گئے، میں نہیں جانا اج نہیں جانا کوئی مشکل آئے گی تے پھر ہی میں کوئی دیگ یا کوئی لڈو یا کوئی 100-200 روپیہ ہدیہ لے کے جاواں گا، تے پھر ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا میں شیب نہیں کیتی، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا میرے کو چندہ نہیں ہے گا، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا میں اج کپڑے نہیں استری کیتے، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا میری جتی پالش نہیں، ابلیس کی طرف سے جھوٹ، میں نہیں جانا اج میں بازار جانا کوئی کام کرنا، ابلیس کی طرف جھوٹ۔ اس لیے ہمیں اپنے سوچنے کے طریقہ کار کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں۔ عقل مندوں کی طرح اپنے مخالف کے جھوٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چند ایک جھوٹ ہے جو ابلیس مجھ سے بولتا ہے، جو میں نے کہا او میرے جوتے نہیں پالش، او میرے کپڑے نہیں ٹھیک، او میں نے شیو نہیں کی، او میں رات کو سویا نہیں، او میں نے دوست سے ملنا ہے، اور بہت سے کام ہیں۔ یہ سب رکاوٹیں ہمارا جسم اور ابلیس کی وہ سوچ کام کرتی ہے جب ہم، پالوس رسول کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی، تمہارا سوچنے کا طریقہ بھی بہک نہ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے مخالف کے جھوٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر جو بہنیں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو اپنے خامدوں کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں۔ جو بیٹیاں ہیں یہاں پر جن کے باپ یا بھائی ہیں، ان سے کہنے کی ضرورت ہے ابو جی یہ آخری وقت ہے، گرجا گھر جانے کی ضرورت ہے، مت اپنے ذہن میں یہ جھوٹ بولیں کیونکہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے کہ بیٹا میں اگلے اتوار جاؤں گا، بیٹا میرے پاس چندہ نہیں، بیٹا لوگ کیا کہیں گے، بیٹا پادری صاحب دعا کنا کہہ دے، بیٹا میرے پاس ہدیہ نہیں۔ یہ سب ابلیس کے جھوٹ ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا، بلکہ خدا خوش ہوگا۔ سو آج ایک ہی بات بیان کرنا چاہتا تھا کہ ابلیس خوشخبری کے پیغام کو، ابلیس خدا کی راہوں سے گمراہ کرتا ہے، اور ابلیس کے بناوٹی جو کام ہے وہ 9 کام ہیں۔ اس لیے ابھی ابلیس بہت سمجھدار ہے، وہ بڑا سیانہ ہے، اور اس کا کام ہے گمراہ کرنا۔ اس لیے ہوشیار ہوں، اسے موقع نہ دیں، اس لیے جاگیں اور بیدار ہوں، اور دوسروں کو بھی بیدار کریں، جس کے لیے پالوس رسول کہتا ہے افسیوں 5 باب اس کی 15 آیت میں، پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، زندگی گزارو، سوچو۔ سو آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں۔ खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हमें समझने की कुव्वत और ताकत दे और दलेरी बख्श, ताकि खुदावन तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचे, जो नहीं आए उन सब की तरबियत और नसीहत के लिए इन तमाम बच्चों को, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, तमाम माओ को और जितनी बहनें जो शादीशुदा हैं इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।